मेरे अत्यंत प्रिय मित्रों, आप सभी को डॉक्टर विजय अग्रवाल का नमस्कार। फ्रेंड्स, आज 14 नवंबर 2017 है और आज के इस AFEIS.com के लाइफ मैनेजमेंट में मैं आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। मित्रों, आइए हम आज एक ऐसे विषय पर बात कर रहे हैं, करने जा रहे हैं, जिससे सच पूछिए तो अभी पूरा देश थोड़ा सा चिंतित है, चौकन्ना भी है और जिसे लेकर आपस में बातचीत भी होने लगी है और अखबारों में भी कुछ इस पर आर्टिकल्स आए हैं और न्यूज तो छपी ही थी। उस समय मैं इस विषय पर आप सबसे इसलिए बात नहीं कर सका था क्योंकि उस समय यहां 15 दिन की मेरी क्लासेस जारी थी, तो सवाल ही नहीं उठता था कि मैं उस करेंट अफेयर्स को लेकर आपसे बातें करता। मित्रों, जिस घटना की मैं बात कर रहा हूं वह घटना कुल मिलाकर यह है कि अभी अक्टूबर में सिविल सर्विस के मेन एग्जामिनेशन हो रहे थे और उस मेन एग्जामिनेशन में एक नौजवान साथी जो 2014 बैच के आईपीएस ऑफिसर थे, इंडियन पुलिस सर्विस में जिनका सिलेक्शन हुआ था, वे नकल करते हुए पकड़े गए। इसके बाद फिर जो भी कार्यवाही होनी थी वो हुई और उन्हें अरेस्ट कर लिया गया। लेटेस्ट सिचुएशन क्या है वो हम लोगों को नहीं मालूम, आगे क्या होगा इनफैक्ट उस के बारे में भी हम लोगों को नहीं मालूम और वो हमारी चिंता का विषय भी नहीं है, वह एक प्रशासनिक कार्यवाही होगी। लेकिन जो देश जिस बात को लेकर चिंतित है, थोड़ा सा उद्वेलित भी है, वो इसको लेकर है दोस्तों कि एक इतने हायर लेवल की सर्विस में सेलेक्ट हुआ कैंडिडेट, इंडियन पुलिस सर्विस बहुत बड़ी सेवा है, बहुत बड़ी सर्विस है, नौकरी है कह लीजिए, उसमें जो कैंडिडेट सेलेक्ट होता है वो 2014 बैच के हैं, ऑलरेडी उन्होंने ट्रेनिंग भी कुछ समय तक की हुई है, सरकारी तंत्र में रहे हुए हैं, पूरी की पूरी व्यवस्था को समझ भी रहे हैं, इसके बावजूद आईएएस बनने के लिए उन्होंने यह गलत रास्ता क्यों अपनाया। यहां एक सवाल और भी उठता है मित्रों, जो मेरे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो ये कि देखिए, जब भी हम सेवा में आते हैं, किसी भी सर्विस में आते हैं, स्पेशली गवर्नमेंट सर्विस में आते हैं, तो इनफैक्ट हमारी जो पहचान है वो दो तरह की हो जाती है। एक पहचान मेरी व्यक्तिगत पहचान है ना, मैं पिता के रूप में, पति के रूप में, बेटे के रूप में, भाई के रूप में, दोस्त के रूप में, रिश्तेदारों के रूप में, पड़ोसी के रूप में एक अलग पहचान रखता हूं और उस हिसाब से मैं व्यवहार करता हूं। मेरी जो दूसरी पहचान है, जो सबसे बड़ी पहचान है, वह मेरी एक पब्लिक आइडेंटिटी की है, यानी कि मैं भले ही एक सरकारी नौकरी में हूं लेकिन जो मेरी पहचान है वह एक तरीके से सार्वजनिक रूप में है, मेरी सार्वजनिक पहचान है। और जो सार्वजनिक पहचान होती है ये कोई छोटी पहचान नहीं होती। इनफैक्ट सच पूछे तो गवर्नमेंट सर्विस में आने का जो सबसे बड़ा प्राउड है, जिस पर हम गर्व कर सकते हैं, वो यही कि जैसे ही हम सर्विस में आते हैं हम सार्वजनिक हो जाते हैं और सार्वजनिक होना कोई छोटी बात नहीं है, हम सार्वजनिक हो जाते हैं। याद रखिए कि सार्वजनिक हो जाने के कारण हमें समाज उसके बदले में बहुत प्रतिष्ठा देता है, हमें पहचान देता है, हमारा ध्यान रखता है, ये कम बड़ी बात नहीं है। इसलिए हमारी ये जिम्मेदारी बन जाती है, बल्कि सही पूछिए तो हमारा ये धर्म बन जाता है कि वो जो कुछ हमें दे रहा है, जिस भावना से हमें दे रहा है, हम उनकी उस भावना की रक्षा करें और हम भी उनका वैसे ही सम्मान करें। तो दोस्तों, रक्षा करें से क्या मतलब है, वो हम पर विश्वास कर रहा है, यानी उनके जिंदगी के बहुत से पहलू हमारे अपने हाथों में होते हैं, वो हम पर फेथ कर रहा है और उस फेथ के बदले ही वो हमें इतना सम्मान दे रहा है, हमारा ध्यान भी रख रहा है। तो मित्रों, क्या हमारी यह जिम्मेदारी नहीं बनती है कि हम उसके विश्वास की हर हालत में रक्षा करें? और वह विश्वास क्या है? विश्वास यह है कि यह जो व्यक्ति सार्वजनिक जीवन में आया है, यह हमारे लिए एक मॉडल है, अपने दायित्वों को निभाने की दृष्टि से भी, अधिकारों का समुचित उपयोग करने की दृष्टि से भी, और जो वर्तमान पीढ़ी है उसके लिए नैतिकता के मापदंड स्थापित करने की दृष्टि से भी। केवल एक बात नहीं है कि मैं केवल अपना काम ही अच्छे से करूं, बल्कि यह भी होता है कि मैं इस तरीके से करूं कि लोगों को मेरे काम पर भरोसा हो, उसकी विश्वसनीयता पर कहीं कोई प्रश्न चिन्ह न लगे, और साथ ही मैं दूसरों के लिए भी एक अच्छा उदाहरण बनूं। और इसे ही तो कहते हैं लीडरशिप। लीडरशिप का मतलब यह नहीं होता कि मुझे नेता बनना है, लीडरशिप का मतलब होता है कि लोग बिना मेरे चाहे अनचाहे या चाहकर भी अनजाने में मुझे फॉलो कर रहे हैं, मेरे पीछे पीछे आ रहे हैं। मुझे दिखाई नहीं दे रही आने वालों की वह भीड़ कि कौन मेरे पीछे आ रहा है, लेकिन लोग मुझे फॉलो कर रहे हैं और जिनके भी फॉलोअर्स होते हैं वो नेता होते हैं। तो मित्रों, यह कुछ ऐसी जिम्मेदारियां होती हैं जो अदृश्य रूप में स्वयं हमारे ऊपर आ जाती हैं, और सच पूछे तो हमारे चेतना में ये बातें मौजूद भी होनी चाहिए। तो वो कौन सी चीज थी, वो कौन सी बात थी, वो कौन सी सोच थी जिसने एक 2014 बैच के युवा आईपीएस ऑफिसर को, जो अभी यंग है, जिसके सामने पूरा भविष्य पड़ा है, ऐसा करने के लिए उकसाता है। मैं प्रेरित करता है शब्द प्रयोग नहीं करूंगा, क्योंकि प्रेरित तो आदमी बहुत अच्छे कामों के लिए होता है, शैतान उकसाता है। तो यह मैं जानबूझकर उकसाना शब्द प्रयोग में ला रहा हूं। तो कौन सी बात है जो हमें इसके लिए उकसाती है? मित्रों, मेरे लिए यहां एक व्यक्ति नहीं है, जिसने भी यह किया है, जिसके साथ भी यह घटना घटित हुई है, मैं बिल्कुल उसे एक व्यक्ति के रूप में लेकर चल ही नहीं रहा हूं। इसलिए आपने गौर किया होगा कि मैंने उनका नाम नहीं लिया है, उनसे कोई मतलब नहीं है, वो प्रतिनिधि हैं। बहुत से ऐसे चीज होती हैं समाज में कि कर्ता एक है, लेकिन उस एक के द्वारा किया गया काम, उठाया गया कदम पूरे समाज को सोचने के लिए विवश कर देता है। मैं इसे इसी रूप में ले रहा हूं। तो मित्रों, कौन वह शैतान है जो हमें इस तरह के कदम उठाने के लिए उकसाता है? यह बहुत गंभीर सवाल है और इस पर बहुत सावधानी के साथ सोचा भी जाना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है मित्रों कि शायद अब हम समय के जिस दौर में एंटर कर गए हैं, इस पर आप थोड़ा सा गौर फरमाइएगा, थोड़ा सा विचार भी कीजिएगा कि हम समाज के जिस दौर में एंटर कर गए हैं, समय के जिस दौर में हम प्रवेश कर गए हैं, वह दौर कुछ ज्यादा ही हड़बड़ी का दौर है। हम सारी चीजें बहुत जल्दी जल्दी में पाना चाहते हैं और किसी भी हालत में पाना चाहते हैं। चलिए, जल्दी, मेरी मेहनत से ज्यादा मेहनत करके मैं जल्दी में पाना चाह रहा हूं, तो वहां तक तो बात ठीक है। हालांकि यह भी ठीक नहीं है, क्योंकि अगर मैं बहुत जल्दी में पाना चाह रहा हूं तो याद रखिए कि जो मेरा पाना होगा वो संपूर्ण पाना नहीं हो सकता, उसमें कोई ना कोई कमी रह ही जाएगी। सीधी सी बात है कि अगर आप पेड़ पर से किसी कच्चे फल को तोड़ लें और उसे बाद में दवाई से पका करके खाएं, तो उसमें न तो वो मिठास होगी और न वो सुगंध होगी, और सच पूछे तो न उतना रस होगा। ऊपर से वो पीला दिखाई देगा, लगेगा कि पक भी गया है, लेकिन वो चीज नहीं होगी जो चीज हमें डल पक से मिल सकती थी। फिर भी चलिए, मैं बहुत अधैर्यवान हूं, बहुत जल्दी में हूं और उसे बहुत जल्दी पाना चाहता हूं, उसके लिए मैं काफी मेहनत भी करता हूं, तो और फलस्वरूप उसके मुझे मिल भी जाता है, लेकिन वह मिलना भी पूरी तरह से मिलना नहीं होता है। फिर भी चलिए मान लेते हैं कि उसे समाज का कोई नुकसान नहीं हुआ है, तो यह स्थिति स्वीकार्य है। लेकिन जब मेरी यह अधैर्यता, मेरी यह जल्दबाजी साधनों के तरीके को भुला देती है, यानी कि मैं किसी भी साधन से, किसी भी तरीके से इसे पाना चाहता हूं, वहां एक बहुत ही खतरनाक स्थिति पैदा हो जाती है। सच पूछिए तो समय और समाज ऐसे समय में ही हमें चेतावनी देता हुआ नजर आता है। अगर हमें वह चेतावनी दिखाई दे जाती है, उसकी उठी हुई उंगली को हमारे चेतना की आंखें देख लेती हैं, तब तो हम सतर्क हो जाते हैं, लगता है कि नहीं, इस रास्ते पर लिखा हुआ है प्रवेश निषेध, तो मुझे इस रास्ते को अख्तियार नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर मैंने इसे अख्तियार किया, इस पर चलना शुरू किया, तो हो सकता है कि मैं अपने डेस्टिनेशन पर तो पहुंच जाऊं, लेकिन वहां पहुंचने के बाद मुझे कोई किसी खतरनाक स्थिति का सामना करना पड़े। लेकिन होता यह है कि मैं जो महत्वाकांक्षी हूं, जो इतना एम्बिशियस हूं, उस एम्बिशियस ने मेरी चेतना की आंखों को इतनी बुरी तरह से बंद कर दिया है, मेरी चेतना में अंधेरा पैदा कर दिया है कि मुझे कुछ दिखाई ही नहीं देता, न उसकी उंगली दिखाई देती है, न उसकी आवाज सुनाई देती है, और मैं उस रास्ते पर चल पड़ता हूं। और उस रास्ते पर चलने का अंततः मित्रों परिणाम क्या होता है, मैं ये परिणाम आपको दोनों ही रूपों में बताना चाहूंगा। पहला परिणाम यह होता है कि मुझे वह चीज मिल जाएगी, मैं खुश हो जाऊंगा, दुनिया भी मेरी जय जयकार करेगी कि देखो इसे यह मिल गया, यह बन गया, इसने पा लिया, कुछ समय तक जय जयकार करेगी। लेकिन याद रखिए फ्रेंड्स कि चाहे जिंदगी की कितनी भी बड़ी चीज क्यों न मिल जाए, कुछ समय के बाद वह उतनी बड़ी लगनी बंद हो जाती है। आप महसूस करेंगे आगे जाकर के, फिर वह उतनी बड़ी नहीं लगती। और यह जिंदगी के सारे क्षेत्रों में होता है, कोई एक क्षेत्र की मैं बात नहीं कर रहा हूं। जिनको पद चाहिए कुछ समय के बाद वो पद छोटा लगने लगता है, जिनको नौकरी चाहिए वो छोटा लगने लगता है, जिनको पैसा चाहिए वो छोटा लगने लगता है, मकान और गाड़ियां चाहिए वो छोटी लगने लगती है, जिनको अपनी प्रेमिकाएं पत्नियों के रूप में चाहिए वो कुछ और लगने लगती है, जिन प्रेमिकाओं को अपने प्रेमी अपने पति के रूप में चाहिए कुछ समय के बाद उन्हें वो कुछ लगने लगते हैं। ऐसा होता है, यानी कि जो चीज हमने गलत तरीके से पाई है उस समय बेतहाशा उसके प्रति चुकी लगाव था, हमने कोई भी रास्ता अख्तियार करके उसे पा लिया, लेकिन याद रखिए कि इस चाहत को आप हमेशा के लिए बचाकर नहीं रख सक पाएंगे। फिर क्या होगा? फिर होगा ये कि हमें वो अपना रास्ता याद आएगा जिस रास्ते से हमने इसे पाया है। तो पहली बात तो यह हुई कि वो हमें अब उतनी बड़ी नहीं लग रही है। दूसरी बात यह कि अब हम अपने इस रास्ते से ही संतुष्ट नहीं है, लग रहा है कि नहीं यार गलत तरीके से पाया है। देखिए चेतना तो झूठ नहीं बोलती, कहीं ना कहीं जाकर के वो कचोटेगी, दुनिया को पता नहीं है लेकिन मुझे तो पता है कि मैंने इसे कैसे हासिल किया है। तो अंदर एक विचित्र किस्म का एक असंतोष सा पैदा होगा, अपनी ही चीजों के प्रति जो मुझे मिली है कहीं ना कहीं विस्तृष्णा का भाव अंदर ही अंदर जागेगा। ये बात अलग है कि मैं उसे बाहर जाहिर नहीं कर सकता, नहीं करना चाहूंगा, लेकिन अंदर से मैं बेचैन हो जाऊंगा। चलिए मित्र, हो सकता है कि मैं अपने उम्र की एक सीमा तक अपने अंदर ऐसा नहीं होने दूं, लेकिन विश्वास कीजिए कि जैसे ही उम्र 50 को पार करेगी और 60 के नजदीक पहुंचती चली जाएगी, ये मेरा जो गलत रास्ता है जो मैंने उठाया था, अनजाने में उठाया था, हड़बड़ी में उठाया था, सांप के फन की तरह बार बार फुफकार मार करके मेरी चेतना को जहरीला बनाएगा और मेरे चेतना पर डंक भी मारेगा। उस समय मुझे ऐसा लगेगा कि मैं ये क्या कर बैठा, काश मैंने ऐसा नहीं किया होता। लेकिन अब पछताने से कुछ नहीं होता, जो किया जाना चाहिए था वो नहीं किया गया, जो नहीं किया जाना चाहिए था वो कर लिया गया। अब यह इतनी सकरी गली है कि लौटने का कोई रास्ता नहीं है। जाने का तो रास्ता है, प्रवेश करने का रास्ता है, लेकिन लौटने का नहीं। तो समझ लीजिए कि जो कुछ भी हमने इन गलत तरीकों से हासिल किया है दोस्तों, विश्वास मानिए कि सब झूठे लगने लगेंगे। जिन चीजों का हम सोच रहे थे कि आनंद लेंगे, रस लेंगे, वही हमें दुख देने वाले बन जाएंगे और बेहद नीरस भी। मित्रों, ये चेतना का कमाल ही है, इसीलिए बहुत लोग चेतना को आत्मा भी कहते हैं, कि जो शुद्ध ही होती है। तो दोस्तों, आज लाइफ मैनेजमेंट में बस इतना ही। मेरे इस विषय पर आप सब भी अपने अपने तरीके से विचार कीजिएगा और मुझे अपने विचारों से अवगत भी कराइएगा, मुझे अच्छा लगेगा। मित्रों, अब आप सबकी अनुमति चाहूंगा। नमस्कार।